معزز نابینا خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ یہ پارٹ ون ہے۔ معزز نابینا خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے عمران سیریز کا ناول ہاٹ لائن۔ یہ سلور جوبلی نمبر ہے۔ اس کے مصنف ارشاد الاسر جعفری ہیں اور اسے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں محمد اظہر لطیف۔ ڈور بیل کی آواز سنائی دی تو عمران کی نظریں کتاب کے صفحے سے ہٹی۔ سلیمان خریداری کے لیے مارکیٹ گیا ہوا تھا، اس لیے عمران کو خود ہی اٹھنا پڑا۔ اس نے دروازہ کھولا اور دروازے پر موجود آدمی کو دیکھ کر بری طرح چونک پڑا۔ دروازے پر سر سلطان کا سرکاری ڈرائیور موجود تھا۔ السلام علیکم سر، ڈرائیور نے مؤدبانہ لہجے میں سلام کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، زاہد تم خیریت تو ہے، اندر آ جاؤ، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ حیرت اسے اس لیے ہو رہی تھی کہ سر سلطان کا ڈرائیور پہلی بار اس کے پاس آیا تھا۔ سر میں اندر نہیں آ سکتا، ہمیں فوری طور پر صاحب کے آفس پہنچنا ہے، ڈرائیور نے بدستور مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہمیں سے کیا مراد ہے، کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے، عمران نے اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ سر آپ نے میرے ساتھ جانا ہے، صاحب نے آپ کو فوری طور پر یاد کیا ہے، ڈرائیور نے کہا۔ کہتے ہیں شیطان کو یاد کرو تو وہ فوراً آ جاتا ہے، کیا تم نے مجھے شیطان سمجھا ہے، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ سر میری ایسی مجال کہاں کہ میں آپ کو شیطان سمجھوں، ڈرائیور نے کہا۔ اگر تمہیں کہیں سے مجال مل جائے تو مجھے شیطان سمجھو گے، عمران نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ سر میں تو معمولی سا ڈرائیور ہوں، میں بھلا ایسا کیسے سوچ سکتا ہوں، ڈرائیور نے زج ہوتے ہوئے کہا۔ یعنی تم ڈرائیور ہو تو تم ایسا نہیں سوچ سکتے، اور تمہارے صاحب چونکہ بہت بڑے افسر ہیں اس لیے وہ ایسا سوچ سکتے ہیں، عمران نے بدستور اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تو بیچارے ڈرائیور کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ سر میں نے تو ایسی بات کہی ہے نہ سوچی ہے، پلیز آپ جلدی سے میرے ساتھ چلیں، اگر ہمیں دیر ہو گئی تو صاحب مجھے نوکری سے نکال دیں گے، ڈرائیور نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ ابھی ہی رو دے گا۔ اچھا تم چند سیکنڈ انتظار کرو، میں کپڑے تبدیل کر لوں، عمران نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر چند لمحوں بعد وہ سر سلطان کی سرکاری کار میں بیٹھا ہوا تھا اور کار سیکرٹریٹ کی طرف بڑھ رہی تھی، جبکہ عمران سوچ رہا تھا کہ سر سلطان نے اسے اس طرح کیوں بلوایا، آج سے پہلے انہوں نے کبھی بھی یہ طریقہ استعمال نہیں کیا۔ سفر کے دوران اس نے سر سلطان کو فون کر کے پوچھنا بھی چاہا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنا سیل فون نکالا ڈرائیور نے اس سے گزارش کی کہ وہ سر سلطان کو فون نہ کرے، کیونکہ سر سلطان نے اسے یہی ہدایت کی تھی۔ عمران نے سیل فون واپس اپنی جیب میں رکھ لیا، لیکن اس کا ذہن مزید الجھ گیا۔ اسی الجھن میں ہی وہ سر سلطان کے آفس پہنچ گیا۔ سر سلطان فون پر کسی سے باتیں کرنے میں مصروف تھے، انہوں نے عمران کے سلام کا جواب دیا اور اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ ریٹائر ہو کر سسپینس سے بھرپور فلمیں بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، سر سلطان نے ٹیلی فون کا ریسیور رکھا تو عمران نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب، میں تمہاری بات سمجھا نہیں، سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جس طرح آپ نے مجھے بلوایا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے، عمران نے کہا۔ عمران جو بات میں اب تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ شاید اس صدی کی سب سے حیرت انگیز بات ہو، اور فون پر چونکہ تم نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دینی تھی اس لیے میں نے تمہیں فون کرنے کے بجائے ڈرائیور کو بھیج کر بلوانا زیادہ مناسب سمجھا، سر سلطان نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ اس صدی کی سب سے حیرت انگیز بات، کیا وہ مسئلہ تو حل نہیں ہو گیا، عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ کون سا مسئلہ، سر سلطان نے چونک کر پوچھا۔ ایک ہی تو مسئلہ ہے جو صدیوں سے حل نہیں ہو رہا، کہ پہلے مرغی آئی یا انڈا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم اپنی حماقتوں سے تو باز آ ہی نہیں سکتے، سر سلطان نے منہ بنا کر کہا۔ اس صدی کی سب سے حیرت انگیز بات بتا ہی دیجئے، عمران نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا۔ اگر کوئی اور موقع ہو تو وہ سر سلطان کو مزید تنگ کرتا، لیکن اس وقت تو وہ خود جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کون سی بات ہے جس کے لیے سر سلطان نے اسے اس انداز میں بلایا ہے۔ اسرائیلی صدر تم سے ملاقات کے خواہش مند ہیں، سر سلطان نے عمران کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران ان کی بات سن کر محاورتن نہیں حقیقتن کرسی سے اچھل پڑا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جج جی کیا فرمایا آپ نے، اس نے حیرت کی زیادتی کی وجہ سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہاں اسرائیلی صدر تم سے ملاقات کے خواہاں ہیں، سر سلطان نے اپنی بات دہراتے ہوئے کہا۔ عمران واپس کرسی پر بیٹھ گیا اور سر سلطان کو اس انداز میں دیکھنے لگا जैसे उसे सर सुल्तान की जहनी सेहत पर शुबा हो। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हें इस सदी की हैरतअंगेज बात बताने लगा हूँ, सर सुल्तान ने कहा। पाकेशिया के इसराइल से सिफारती ताल्लुकात तो है नहीं, फिर इसराइली सदर की ये बात आप तक कैसे पहुंच गई? चंद लम्हों की खामोशी के बाद इमरान ने सर सुल्तान से कहा, एक दोस्त मुल्क के सफीर की मार्फत। इस दोस्त मुल्क के सफीर ने यकीन दहानी कराई है कि तुम्हें वहां मुकम्मल प्रोटोकॉल मिलेगा, सर सुल्तान ने कहा। प्रोटोकॉल किस काम का? कर्नल डेविड तो मुझे देखते ही गोली मार देगा, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। नहीं, इसराइली हुकूमत तुम्हारी सिक्योरिटी की जिम्मेदार है, कर्नल डेविड तो खुद एयरपोर्ट पर तुम्हें सल्यूट करेगा, सर सुल्तान ने इस मरतबा मुस्कुराते हुए कहा, तो इमरान की हैरत में और इजाफा हो गया। अब सवाल ये है कि इसराइली सदर मुझसे क्यों मुलाकात करना चाहते हैं, इमरान ने कहा। मुझे तो इतना बताया गया है कि इसराइली सदर तुमसे अहम मशवरे और चंद गुजारिशात करना चाहते हैं, सर सुल्तान ने इमरान की हैरत में और ज्यादा इजाफा करते हुए कहा। या हैरत, इमरान ने इतना कहा और खामोश हो गया। चंद लम्हों तक ऑफिस में खामोशी रही। दुश्मनों के बमों गोलियों से तो अल्लाह ने मुझे बचाए रखा है, लेकिन लगता है आपकी ये हैरत अंगेज बातें मुझे मार डालेंगी, चंद लम्हों की खामोशी के बाद इमरान ने कहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, सर सुल्तान ने गुस्सीले लहजे में कहा। अब आप खुद ही सोचें, जब मुझे इतनी हैरत अंगेज बातें सुनने को मिलेंगी तो क्या मेरा दम नहीं निकलेगा, इमरान ने कहा। तुम्हें बस अपनी ही बात कहनी होती है, किसी और के जज्बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, सर सुल्तान ने बदस्तूर गुस्से से कहा। अच्छा, छोड़े इन बातों को, अब आप ये बताएं कि क्या मुझे इसराइल जाना चाहिए, इमरान ने कहा। हाँ, हुकूमत तो यही चाहती है कि तुम इसराइल जाओ, सर सुल्तान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। लेकिन मैं तो सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ कि सरकारी अफसरान मुझ पर हुक्म चलाएंगे, इमरान ने कहा। मैं बहैसियत सरकारी अफसर के तुम पर हुक्म नहीं चला रहा, बल्कि तुम्हारा बुजुर्ग होने के नाते तुम्हें हिदायत कर रहा हूँ कि तुम इसराइल जाओ, क्योंकि हमारे दोस्त मुल्क के सफीर ने इसराइली सदर से वादा किया है कि तुम जरूर इसराइल आओगे, सर सुल्तान ने कहा। दोस्त मुल्क के सफीर साहब ने यह वादा किस बिना पर किया है, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। मेरी दोस्ती की बिना पर, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्हें यकीन है कि मैं तुम्हें इसराइल भेज दूंगा, जिस तरह मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात नहीं डालोगे, सर सुल्तान ने जज्बाती लहजे में कहा। आप मुझे अंधे कुएं में कूदने का हुक्म दे दें तो मैं उस पर अमल करूंगा, इसराइल जाना तो बहुत मामूली सी बात है, इमरान ने कहा। तो सर सुल्तान का चेहरा खुशी से खिल उठा। मुझे तुम पर फख्र है, लेकिन तुमने ये बात बिल्कुल गलत कही कि मैं तुम्हें अंधे कुएं में कूदने का हुक्म दूंगा, सर सुल्तान ने खुशी और शिकवे के मिले जुले तासुरात के साथ कहा। मैंने तो मुहावरतन ये बात कही है, इस मरतबा इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मुहावरतन अच्छी बात नहीं कह सकते, सर सुल्तान ने मुंह बनाते हुए कहा, तो इमरान हंसने लगा। ओके, मैं अब चलता हूँ और इसराइली सदर की इस दावत दावत की वजूहात मालूम करने की कोशिश करता हूँ, इमरान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। क्योंकि वो सर सुल्तान की सरकारी कार पर आया था, इसलिए वो वापसी पर टैक्सी में बैठा और टैक्सी दानिशमंद दिल की तरफ बढ़ने लगी। फिर जैसे ही वो दानिशमंद दिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ, हस्बे मामूल ब्लैक जीरो इसके एहतराम में खड़ा हो गया। रस्मी सलाम दुआ के बाद इमरान अपने कुर्सी पर बैठ गया। इमरान साहब, लगता है कोई खास बात हो गई है, ब्लैक जीरो ने इमरान को गौर से देखते हुए कहा। सर सुल्तान ने दिमाग की चूल्हे तो हिला दी हैं, लेकिन चाय नहीं पिलाई, तो तुम ही चाय पिला दो, इमरान ने कहा। जी बेहतर, मैं अभी बना कर लाता हूँ, ब्लैक जीरो ने कहा और फिर वो किचन की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो चाय बनाकर ले आया। कुछ देर पहले तुमने पूछा था कि क्या कोई खास बात हो गई है, इमरान ने चाय सिप करते हुए कहा। जी हाँ, आपके चेहरे पर मुझे कुछ अजीब से तासुरात मिले हैं, ब्लैक जीरो ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। सर सुल्तान के बकौल तो इस सदी की सबसे हैरतअंगेज बात हो गई है, इमरान ने कहा। वो क्या इमरान साहब, ब्लैक जीरो ने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। इसराइली सदर मुझसे मुलाकात के ख्वाहां हैं, इमरान ने कहा, तो ब्लैक जीरो भी अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। जी, उसने भी हैरत की शिद्दत से हकलाते हुए कहा। हाँ, इमरान ने कहा और फिर उसने ब्लैक जीरो को सर सुल्तान से मुलाकात की तफसील बता दी। लेकिन क्यों इमरान साहब, इसराइली सदर आपसे मिलना क्यों चाहते हैं, ब्लैक जीरो ने कहा। वो अभी तक सर सुल्तान को भी नहीं मालूम, इस मरतबा इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। सर सुल्तान दोस्त मुल्क के सफीर से वजह तो मालूम करते हैं, ब्लैक जीरो ने कहा। मेरा ख्याल है कि इस सफीर को भी वजह मालूम नहीं होगी, इमरान ने कहा। फिर आपका क्या इरादा है, आप इसराइल जाएंगे? लेग 0 ने पूछा। हाँ, सुल्तान मुअज्जम का हुक्म है, अगर ना माना गया तो गर्दन धनी के अहकाम आ जाएंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा भी हो सकता है, लेग 0 ने कहा। लग तो मुझे भी ऐसा रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, इमरान ने कहा। इमरान साहब, ये आपके खिलाफ साजिश नहीं हो सकती, अगर ये इसराइल की साजिश होती तो किसी मुल्क का सफीर इसमें शामिल ना होता, लेग 0 ने सोचते हुए कहा, तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। दानिश मंजिल में रह रहकर अब तुम्हारी दानिश भी कुछ बेहतर हो गई है, इमरान ने कहा। सर, ये तो बस आपकी सोहबत का असर है, ब्लैक 0 ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया, क्योंकि उसका जहन एक बार फिर ये सोचने में लगा हुआ था कि इसराइली सदर को ऐसी क्या मजबूरी पेश आ सकती है कि वो अपने बदतरीन दुश्मन से मुलाकात करना चाहता है। इमरान ने इसराइल को अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया था और उसके साथ साथ सैकड़ों इसराइली एजेंटों की गर्दनें भी तोड़ी थी। इसराइल का तो बच्चा बच्चा इमरान की मौत का ख्वाहा था, क्योंकि इमरान ग्रेट इसराइल की राह में सबसे बड़ी दीवार था और अब इसराइली सदर इमरान से मुलाकात करना चाहता था, इससे मशवरा करना चाहता था और इससे कुछ गुजारिशात भी करना चाहता था। वो ये किस मजबूरी के तहत कर रहा था? इमरान साहब, आपकी रवानगी कब तक है? ब्लैक 0 की आवाज ने इमरान की सोचों के सिलसिले को तोड़ दिया। पहले मैं इसराइली सदर से बात तो कर लूं, इमरान ने कहा और फिर उसने अपनी जेब से आम सेलफोन सेट निकाला और इसराइली सदारती ऑफिस के नंबर प्रेस करने लगा जो उसे जबानी याद थे। इमरान दर्जनों मरतबा इसराइल आया था, लेकिन आज से पहले वो जितनी बार भी इसराइल आया था उसे खुफिया रास्तों और मेकअप का सहारा लेना पड़ा था, लेकिन आज वो अपनी असल शक्लो सूरत में आया था। वो बाकायदा इसराइली एयरलाइन के तैयारे पर इसराइल के दारुल हुकूमत आया था। इससे कबल वो भी जब भी इसराइल का रुख करता था, इसराइली सीक्रेट एजेंसियां उसकी तलाश में जमीन और आसमान एक कर देती थी। खास तौर पर GP5 का चीफ कर्नल डेविड तो इसकी तलाश में पागल हो जाता था और आज इस कर्नल डेविड ने एयरपोर्ट पर उसका इस्तकबाल किया। इमरान ने उसके चेहरे के तासुरात से उसकी दिली कैफियत का अंदाजा लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर इमरान के लिए सिर्फ एहतराम ही था और ये बात इमरान के लिए और ज्यादा हैरत का बायस थी। इमरान के तो वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि कर्नल डेविड कभी उससे इस अंदाज में मिलेगा। एयरपोर्ट से बाहर इमरान को GP5 की शानदार गाड़ी में बिठाया गया। इस गाड़ी के आगे पीछे और दाएं बाएं GP5 की सिक्योरिटी गाड़ियां मौजूद थी। कर्नल साहब, इतनी गाड़ियों ने हमें घेरे में क्यों ले लिया है? क्या मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है? इमरान ने कहा। सर, आप हमारे मौजूद मेहमान हैं और मेहमानों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। ये गाड़ियां आपकी हिफाजत के लिए हैं। यहाँ हुकूमत के बहुत से दुश्मन भी हैं जो हुकूमत के मेहमानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कर्नल डेविड ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। इमरान ने उसकी गुफ्तगू का अंदाज देखने के लिए ही ये सवाल किया था, वरना तो वो जानता ही था कि इसराइली हुकूमत ने उसे इतनी सिक्योरिटी क्यों फरहम की है। इमरान उससे मजीद सवाल भी करना चाहता था, लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोश रहा। थोड़ी देर के सफर के बाद गाड़ियों का ये काफिला इसराइली सदारती ऑफिस पहुंच गया। जैसे ही इमरान कर्नल डेविड के साथ सरदारती ऑफिस पहुंचा, ऑफिस का दरवाजा खुला और इसराइली सदर चंद आला अफसरान के साथ बाहर आ गए। वेलकम वेलकम इमरान, वेलकम, इसराइली सदर ने मुस्कुराते हुए कहा और मुसाफिर के लिए अपना हाथ इमरान की तरफ बढ़ाया। ऐसा इस्तकबाल तो ससुर और ससुराली रिश्तेदार शादी के मौके पर दूल्हा का किया करते हैं। क्या मेरी भी यहाँ शादी हो रही है? इमरान ने शर्माते हुए कहा और साथ ही इसराइली सदर से मुसाफा किया। मिस्टर इमरान, अगर आप इसराइली लड़की से शादी के ख्वाहिशमंद हैं तो हम आपकी शादी करा देते हैं, इसराइली सदर ने खुश दिली से कहा। साथ ही दूसरे आला अफसरान इमरान से मुसाफा करने लगे। आप मुझे पहले बता देते कि मुझे शादी के लिए बुलाया जा रहा है तो फिर मैं मुकम्मल बारात लेकर आता, इमरान ने मुसाफे के दौरान कहा। हम अभी खसूसी तैयारा पाकिस्तान भेज देते हैं जो आपके अजीज व अकारिब को ले आएगा, इसराइली सदर ने मुस्कुराते हुए कहा। इसराइल के दीगर अफसरान हैरत लेकिन खामोशी से अपने सदर मुमलिकत और इमरान की बेतकल्लुफाना गुफ्तगू सुन रहे थे। सदर मुमलिकत का इमरान से इस तरह की गुफ्तगू करना उनके लिए हैरत का बायस ही था। सदर इंतहाई संजीदा और बावकार इंसान थे, किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो इनसे इस तरह बेतकल्लुफ होकर गुफ्तगू करता, लेकिन इमरान इनसे इस तरह बातें कर रहा था जैसे वो किसी मुल्क के सदर के बजाय अपने किसी क्लास फेलो से बातें कर रहा हो। अगर मैंने इस तरह आनन फानन शादी कर ली तो मेरे सर के बाल भी आनन फानन उड़ जाएंगे, इमरान ने कहा। आपके सर के बाल उड़ जाएंगे, लेकिन कैसे? इस मरतबा इसराइली सदर ने हैरान होकर कहा। मेरी अम्मा भी ने मेरे सर पर इस कदर जूते मारने हैं कि एक बाल भी मेरे सर पर नहीं रहेगा, इमरान ने मासूम से लहजे में कहा। तो इसराइली सदर एक बार फिर मुस्कुराने लगे। मिस्टर इमरान, हम आपके बेहद ममनून हैं कि आप हमारी दावत पर तशरीफ लाए। अब आप मीटिंग रूम में तशरीफ ले चलें। कुछ देर बाद आपसे हमारी मुलाकात मीटिंग रूम में होगी, इसराइली सदर ने इस मरतबा संजीदा लहजे में कहा। आइए सर, मैं मीटिंग रूम तक आपकी रहनुमाई कर दूं, सदर के साथ खड़े हुए एक अफसर ने इमरान से कहा। ओके चलिए, इमरान ने कहा तो अफसर एक तरफ बढ़ा, इमरान उसके साथ चलने लगा। तकरीबन 2.5 मिनट चलने के बाद वो एक बड़े दरवाजे के करीब पहुंच गए। इस दरवाजे पर दो फौजी ऑफिसर खड़े हुए थे। इन दोनों ने इमरान को सल्यूट किया और फिर दरवाजा खोल दिया। इमरान मीटिंग रूम में दाखिल हो गया। जैसे ही वो मीटिंग रूम में दाखिल हुआ, उसे हैरत का एक और झटका लगा, क्योंकि मीटिंग रूम में कर्नल फरीदी, मेजर परमूद और कर्नल जैद सोफों पर बैठे हुए थे। इमरान को देखकर उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई और वो इमरान के इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए। इमरान ने उन तीनों से मुसाफा किया और उनके दरमियान रस्मी कलमात का तबादला हुआ। या मुर्शिद, हमें यहाँ किस खुशी में दावत दी गई है? इमरान ने कर्नल फरीदी से कहा। इन तीनों को मीटिंग रूम में देखकर इमरान को हकीकी तौर पर हैरत से दोचार होना पड़ा था। इसके तो ख्वाब ख्याल में भी ये नहीं था कि इन तीनों से इसकी यहाँ इस तरह मुलाकात भी हो सकती है। मुझे तो यहाँ आने के हुकूमती ऑर्डर मिले, सो मैं आ गया। इस मीटिंग के बारे में मुझे नहीं बताया गया था, कर्नल फरीदी ने कहा। इमरान साहब, इस मीटिंग के एजेंडे से तो हम भी लाइल्म हैं, लेकिन हमें आपको यहाँ देखकर इंतहाई हैरत हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान के तो इसराइल से सिफारती ताल्लुकात भी नहीं है, कर्नल जैद ने कहा। मुझे एक दोस्त मुल्क के जरिए दावत दी गई है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। दोस्तों की बात तो माननी पड़ती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। कर्नल फरीदी साहब तो काफ्रिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और काफ्रिस्तान के इसराइल से गहरे मरासिम हैं। वाकई हम तीनों से यहाँ दावत देकर बुलाना वाकई इंतहाई हैरत की बात है, मेजर परमूद ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। बकौल सर सुल्तान, ये सदी का सबसे हैरतअंगेज वाकया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर इससे पहले कि इमरान की बात के जवाब में कोई बोलता, मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और इसराइली सदर एक कर्नल के हमराह अंदर दाखिल हुए। इसराइली सदर को मीटिंग रूम में दाखिल होते देखकर पहले कर्नल फरीदी, फिर कर्नल जैद, उनके बाद मेजर परमूद और सबसे आखिर में इमरान अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए। इसराइली सदर बावकार अंदाज में चलते हुए अपनी मखसूस कुर्सी तक पहुंचे। फिर जब वो कुर्सी पर बैठ चुके तो कर्नल वापस चला गया और वो चारों सोफे पर बैठ गए। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए, इसराइली सदर ने बावकार लहजे में बोलना शुरू कर दिया। आप यकीनन हैरान हैं कि आपको यहाँ क्यों जहमत दी गई है, सदर इसराइल ने इतना कहा और खामोश हो गए और इन चारों को गौर से देखने लगे। इन चारों के चेहरों पर हैरत के तासुरात मौजूद थे, जिन्हें इन चारों ने छुपाने की कोशिश भी की थी। दरअसल इसराइल पूरी इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए एक अजीम उशान प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता है, जिसके लिए इसराइल को आपके ताबुन की जरूरत है, इसराइली सदर ने कहा और एक बार फिर खामोश हो गए। इमरान, कर्नल फरीदी, मेजर परमूद और कर्नल जैद के लिए इसराइली सदर के अल्फाज नाकाबले यकीन थे। इसराइल और इंसानियत की फलाह व बहबूद का मनसूबा, ये तो दो मुतजाद बातें हैं। इसराइल तो इंसानियत का बदतरीन दुश्मन है। फलस्तीन में उसके मजालिम इंसानियत के मुंह पर तमाचा थे। यूं तो इसराइल पूरी दुनिया का ही दुश्मन था, लेकिन मुसलमानों का वो बदतरीन मुखालिफ था। उसकी तो हमेशा से यही कोशिश रही थी कि वो दुनिया भर से मुसलमानों का नामो निशान मिटा दे, और आज इसराइली सदर उनसे कह रहा था कि वो इंसानियत की फलाह व बहबूद के आलमी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता है। इन चारों के लिए ही ये बात नाकाबले यकीन थी, लेकिन वो खामोश रहे। वो इसराइली सदर से इस मंसूबे की तफसीलात सुनना चाहते थे। मैं जानता हूँ कि आपके लिए ये बात हैरानकुन है, क्योंकि आप इसराइल को जारह और जालिम मुल्क समझते हैं, लेकिन इस वक्त हमारी मीटिंग का एजेंडा आप लोगों की सोचों को तब्दील करना नहीं है, इसलिए मैं इस मौजू पर बात नहीं करूंगा। जब हम अपने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेंगे और दुनिया पर साबित हो जाएगा कि इसराइल ने पूरी इंसानियत की फलाह के लिए काम किया है, तो सबकी नजरियात खुद ब खुद तब्दील हो जाएंगे। इसराइली सदर ने ठोस लहजे में कहा, जनाबे सदर, क्या ये बेहतर नहीं है कि इसराइल इंसानियत की फलाह का मंसूबा शुरू करने से पहले मसला फलस्तीन के हल की भी कोशिश करे? इमरान से रहा ना गया तो उसने अपने दिल की बात कह ही दी। मिस्टर इमरान, मुझे खुशी हुई कि आपने साफ बात कह दी है। देखें, मसला फलस्तीन 2, 4 या 8, 10 बरसों का नहीं है, ये तो कई दहाइयों से हल तलब चला आ रहा है। इसमें कई पेचीदगियां भी हैं, लेकिन अब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस मसले के हल की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाएगी और हम बहुत जल्द इसके किसी अच्छे हल तक पहुंच जाएंगे। इसराइली सदर ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा, जिस तरह काफ्रिस्तान वादी मुश्कबार का मसला हल नहीं करना चाहता, इसी तरह इसराइल भी मसला फलस्तीन के हल में मुखलिस नहीं है। इमरान ने तंजिया लहजे में कहा, मिस्टर इमरान, आप इसराइली सदर साहब से मीटिंग करने आए हैं, आप किसी भी हवाले से काफ्रिस्तान का जिक्र मत करें। मैं काफ्रिस्तान के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, कर्नल फरीदे ने खुश्क लहजे में कहा। इमरान साहब, इंसान की तख्लीक के साथ ही मसाइल भी शुरू हो गए थे और जब तक ये दुनिया रहेगी मसाइल इंसान के साथ साथ रहेंगे, लिहाजा फिलहाल हमें इन मसाइल को एक तरफ रख देना चाहिए। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि हम पूरी इंसानियत की फलाह के लिए एक प्रोजेक्ट बनाएं। जब हम मिलकर ये काम करेंगे तो मुझे यकीन है कि हम एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे। फिर हम दूसरे तमाम मसाइल के हल की भी कोशिश करेंगे और आप यकीन रखिए कि हम इन मसाइल को हल कर लेंगे, इसराइली सदर ने कहा। ओके, आप अपने मंसूबे के बारे में बताएं, इमरान ने इस बार नरम लहजे में कहा। मैंने इस प्रोजेक्ट को सिल्वर प्रोजेक्ट का नाम दिया है। मंसूबे की तफसीलात सुनने के बाद अगर आप नाम में तब्दीली चाहें तो वो भी हो जाएगी, इसराइली सदर ने कहा। वो एक बार फिर खामोश हो गए। आप जानते हैं कि इंसानी जिस्म में जीनियाती तगैयुरात बीमारी का बायस बनते हैं। एक जीन में होने वाली तब्दीली सिस्टिक फाइब्रोसिस को जन्म दे सकती है, दूसरा टीबी का, तो तीसरा तब्दील शुदा जेन स्किल सेल नीमिया की वजह से बन सकता है कि जिसमें खून के सुर्ख खलियात की शक्ल दराती जैसी हो जाती है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को ऑक्सीजन की फराहमी में रुकावट होने लगती है। इसराइली सदर इतना कहकर रुक गए, फिर उन्होंने अपने सामने रखा हुआ गिलास उठाया। गिलास पर शीशे का कवर रखा था, उन्होंने कवर मेज पर रखा और गिलास में मौजूद निस्फ पानी पी लिया। उसके बाद उन्होंने गिलास वापस मेज पर रखा और उस पर कवर भी रख दिया। आपके इल्म में होगा कि इंसानी जेनियम में 3 अरब से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड सॉस होते हैं। इन जेनियम का तजिया करके बीमारी की तशखीस और उसका इलाज दरियाफ्त करने के लिए रिसर्च की जाती है, लेकिन 3 अरब से ज्यादा जेनियम का तजिया करना मुमकिन नजर नहीं आता। इसलिए साइंसदान पूरे जेनियम के बजाय सिर्फ मखसूस और अहम जीन्स पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीफार्म्स पर तहकीक में मसरूफ हैं, जिन्हें मुख्तसरन LNP लिखा जाता है। इन्हें हम जीनियाती शनाख्ती अलामतों की मानिंद समझ सकते हैं जो क्रोमोसोम्स में बिखरी हुई हैं। डीएनए की जंजीर में उनकी तब्दीली भी हर लम्हा तब्दील हो सकती है। अब हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी मशीन ईजाद करें जो इंसान की बीमारी की तशखीस और इलाज करे। ये खुदकार मशीन हो, एक इंसान की जेब में क्रेडिट कार्ड जैसा एक कार्ड हो जिसमें उसकी तमाम तिब्बी खसूसियात मय जीनियाती खसूसियात का डेटा फीड हो, उसकी तारीख पैदाइश, कद काठ, ब्लड ग्रुप, पसंद और नापसंद, एलर्जी पैदा करने के असबाब और दीगर तमाम मालूमात भी इस कार्ड में महफूज हो। जैसे ही कार्ड मशीन में डाला जाए, मशीन की स्क्रीन रोशन हो जाए और कार्ड डालने वाले इंसान के तमाम खसूसियात पलक झपकने में मशीन के इल्म में आ जाए। फिर बीमार इंसान मशीन के एक बटन पर उंगली रखे और उसे सुई चुभने का एहसास हो, यानी उसके खून का नमूना लेकर खून टेस्ट करे। मशीन पर चंद सवालात उभरे, बीमार आदमी जवाबात दे और यूं चंद मिनटों में मशीनी डॉक्टर मर्ज की तशखीस कर ले और फिर इस मशीन से प्रिंट आउट बरामद हो, दवा भी उसी कागज पर प्रिंट आउट की सूरत में मौजूद हो और परहेज़ हिदायत दी, बीमार इंसान उसे खाए और घंटों में सेहत याब हो जाए। तवील गुफ्तगू करने के बाद इसराइली सदर खामोश हो गए। क्या ऐसा हो सकता है, मेजर परबूद ने हैरत भरे लहजे में कहा। यस, ऐसा मुमकिन है। मिस्टर इमरान, आप तो बजाते खुद साइंसदान हैं, क्या आपको मेरी ये बातें अफसानवी मालूम हो रही हैं, इसराइली सदर ने मेजर परमूद से और फिर इमरान से कहा, मेजर साहब भी जानते हैं कि साइंस तो एक जादू है, इसमें कोई बात नामुमकिन नहीं। इमरान ने कहा, सर ऐसा हो सकता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने हमें क्यों मदऊ किया है। कर्नल फरीदी ने संजीदा लहजे में कहा, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसराइल तनहा इस पर काम नहीं कर सकता, लिहाजा हमने फैसला किया है कि हम जीनियात में अथॉरिटी समझे जाने वाले साइंसदानों को अपने साथ शामिल करें। इसके लिए मालूमात हासिल की गई तो चंद साइंसदानों के नाम सामने आए, जिनमें एक तो डॉक्टर मुशाहिद हक्कानी है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, दूसरी डॉक्टर आबेला है, जो उर्दुन के शाही खानदान से ताल्लुक रखती हैं, बल्गारनिया से डॉक्टर मुराद और काफ्रिस्तान की डॉक्टर शीला देवी शामिल हैं। ये चारों साइंसदान अगर हमारे साइंसदानों के साथ मिलकर काम करेंगे तो हम इस प्रोजेक्ट में जरूर कामयाब हो जाएंगे, इसराइली सदर ने एक मरतबा फिर तवील गुफ्तगू करते हुए कहा। सर अगर आपको इन साइंसदानों की खिदमत की जरूरत थी तो आप हुकूमतों से बात करते, आपने हमें क्यों बुलवाया है, कर्नल जैद ने कहा तो इसराइली सदर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हम ये प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं इंसान की फलाह के लिए, और यह ऐसा मंसूबा है कि जब ये मुकम्मल हो गया तो इसे कोई मुल्क या मुजरिम तंजीम उड़ाने की कोशिश करेगी, क्योंकि मशीनी डॉक्टर तैयार हो जाता है तो इससे अरबों डॉलर्स कमाए जा सकते हैं। इस मशीन की एंटी मशीन बनाकर दुनिया में खौफनाक बीमारियां भी फैलाई जा सकती हैं, तो हमें इसकी सिक्योरिटी का फुल प्रूफ सिस्टम भी बनाना है। आप चारों अफराद दुनिया के बेहतरीन सीक्रेट एजेंट और जहीन तरीन इंसान समझे जाते हैं, आपको इसीलिए दावत दी गई है ताकि आप हमारे माहिरीन के साथ मिलकर इस सिल्वर प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी के लिए कोई ऐसा सिल्वर प्लान बनाएं जो नाकाबिले शिकस्त हो, इसमें मामूली सी खामी भी ना हो, और मुझे यकीन है कि जो आप प्लान बनाएंगे वो मेरी सोच से भी बढ़कर होगा, इसराइली सदर ने पुरेतमाद लहजे में कहा। इसराइली सदर की बात मुकम्मल हुई तो इन चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इमरान के जहन में तो सिर्फ एक ही बात थी कि क्या इसराइली सदर मुखलिस भी है। जनाब सदर, जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इमरान ने पूछा। ये टेक्नोलॉजी पांचों मुल्कों के पास रहेगी और इंसानियत की फलाह के इस मंसूबे में हम दुनिया के तमाम ममालिक को शामिल करेंगे। हम एक फंड कायम करेंगे जिसमें दुनिया भर के ममालिक से अतियात वसूल किए जाएंगे और इन मशीनों को दुनिया के तमाम ममालिक में आबादी के तनासुब से नष्ट किया जा सकेगा। इसमें हमारा कमीशन बिल्कुल नहीं होगा। इस फंड से जिस कदर मशीनें तैयार होंगी हम दुनिया के तमाम ममालिक को सप्लाई करेंगे, चाहे कोई अमीर मुल्क हो या चाहे गरीब, इसराइली सदर ने कहा। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये बहुत ही अजीम मंसूबा है। अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो गया तो दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा, बीमारियों पर बहुत हद तक काबू पा लिया जाएगा, गरीब अमीर सबके लिए इलाज में फर्क हो जाएगा, बीमारियों के साथ साथ गुर्बत में भी कमी वाकई होगी, कर्नल फरीदी ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। दरअसल वो चश्मे तसव्वुर में इस मशीन को और उसकी कारकर्दगी को देख रहे थे। जनाब सदर, सिक्योरिटी प्लान तो हम मिलकर बना लेते हैं, लेकिन साइंसदानों के लिए तो आपको बाकायदा हुकूमतों से मुतालबा करना पड़ेगा, मेजर परमूद ने कहा। हम बाकायदा सिफारती बुनियादों पर हुकूमत से मुतालबा करेंगे, लेकिन पाकिस्तान से हमारे सिफारती ताल्लुकात नहीं है और मिस्टर इमरान अपने मुल्क में खास अहमियत रखते हैं, लिहाजा ये डॉक्टर मुशाहिद हक्कानी को इसराइल भिजवा सकते हैं, इसराइली सदर ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। जनाब मुझे तो मेरा बावर्ची अहमियत देने को तैयार नहीं, पाकिस्तान के आला हुक्काम भला मुझे कहाँ अहमियत देंगे, इमरान ने मिस्कीन से लहजे में कहा। जनाब X2 पाकिस्तान की सबसे बा इख्तियार शख्सियत है और आप उनके नुमाइंदा खसूसी हैं। हमारी मालूमात के मुताबिक जनाब X2 आपकी बात मानते हैं, इसराइली सदर ने कहा। मोहतरम सदर साहब, आप इन चीफ नामी मखलूक की नफ्सियात नहीं समझते, चीफ अपने मफाद को मद्देनजर रखते हैं और सिर्फ हुक्म चलाना जानते हैं। आप कर्नल डेविड की नफ्सियात का तज्जिया करा लें, इमरान ने कहा। डॉक्टर मुशाहिद हक्कानी तो इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत जरूरी है मिस्टर इमरान, इसराइली सदर ने परेशान होकर कहा। इमरान साहब आप अपने चीफ और सर सुल्तान से बात कीजिए, उन्हें इस प्रोजेक्ट की अहमियत के बारे में और इसराइल के खुलूस के बारे में बताइएगा, उम्मीद है इंसानियत की फलाह को मद्देनजर रखते हुए वो मान जाएंगे, कर्नल फरीदी ने कहा। वो चूंकि इस वक्त मीटिंग में बैठे हुए थे इसलिए कर्नल फरीदी ने इमरान से बेतकल्लुफाना लहजे में बात नहीं की थी। चीफ जी फेक्स्टू तो बहुत ही सख्त और कड़क मिजाज का इंसान है। इससे बात करते हुए मैं कुदरती तौर पर खौफजदा हो जाता हूँ। अलबत्ता सर सुल्तान को मैं कायल कर लूंगा, वो मेरे बुजुर्ग हैं और मेरी बात भी मान जाते हैं, इमरान ने कहा तो इसराइली सदर ने उसे हैरत से देखा। ये वही इमरान था जिसका नाम सुनकर वो खौफजदा हो जाता था। सिर्फ वही नहीं बल्कि उसे मालूम था कि इकरीमी और काफ्रिस्तानी हुकाम भी उससे खौफजदा रहते थे। उनके ख्याल में इमरान एक भूत था, एक आफत थी, एक तूफान था, और वही इमरान एक्स-2 से खौफजदा था। जिस शख्सियत से इमरान जैसा शख्स भी खौफजदा था, वो शख्सियत न जाने कैसी होगी। सर इमरान साहब ने वादा कर लिया है तो अब आप मुतमईन हो जाएं। डॉक्टर मुशाहिद हक्कानी इस मंसूबे में शामिल हो जाएंगे, कर्नल फरीदी ने कहा तो इसराइली सदर की सोचों का सिलसिला टूट गया। थैंक्स, मुझे खुशी है कि इंसानियत की फलाह के इस मंसूबे में आप सब शामिल हो रहे हैं। अब थोड़े से वक्फे के बाद आपकी मीटिंग कर्नल डेविड और दीगर हुकाम से होगी। आप सब मिलकर इस प्रोजेक्ट के तमाम पहलुओं पर गौर कर लीजिएगा, इसराइली सदर ने कहा, और इसके साथ ही वो अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। शाम के 5 बजते ही धुंध ने शहर को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया था और 6 बजे तक पूरे यरूशलम पर धुंध स्याही की मानिंद छा चुकी थी। सर्दी इस कदर पड़ रही थी कि लोग सरे शाम ही बिस्तरों में दुबक गए थे, और अब जबकि रात के 11 बज चुके थे तो ऐसा महसूस होता था वही यरूशलम जिंदा इंसानों के बजाय मुर्दों की बस्ती हो। गो के थोड़े थोड़े फासले पर स्ट्रीट लाइट्स रोशन थी, लेकिन धुंध ने उन्हें अपने अंदर इस तरह छुपा लिया था कि उनकी रोशनी 1.5 फीट से ज्यादा फासले पर नहीं पड़ रही थी। यरूशलम की सड़कें बिल्कुल ही सुनसान हो चुकी थीं, लेकिन ग्रीन रोड पर एक कार मुनासिब रफ्तार से चल रही थी। कार काले रंग की थी और उसकी लाइट्स भी बंद थीं, इसलिए ये कार तारीकी का हिस्सा मालूम हो रही थी। धुंध की वजह से 2-2.5 फीट से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ड्राइवर इस तरह कार चला रहा था जैसे वो रोशन दिन में ड्राइविंग कर रहा हो। ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी जिसके सुर्ख और तराशीदा बाल उसके कंधे तक आ रहे थे। उन दोनों ने इंतहाई चुस्त लिबास पहने हुए थे और वो दोनों ही खामोश थे। हम मंजिल 1 के करीब पहुंच चुके हैं G5, कार में तारी गहरे सुकूत को ड्राइवर की आवाज ने तोड़ा और लड़की एकदम चौकस हो गई। उसके साथ ही कार की रफ्तार भी हल्की हो गई। फिर चंद लम्हों बाद कार एक जगह रुक गई। डैशबोर्ड पर 2 चश्मे रखे हुए थे। लड़की ने, जिसे उसके साथी ने G5 के नाम से पुकारा था, एक चश्मा उठाकर अपनी आंखों पर लगा लिया और दूसरा ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिया। धुंध की वजह से 2-2.5 फीट से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन चश्मा लगाते ही G5 को दूर दूर तक साफ दिखाई देने लगा। उनसे कुछ फासले पर एक सुर्ख रंग की इमारत थी और यही सुर्ख रंग की इमारत उनका टारगेट थी। चंद लम्हों तक इमरान को देखने के बाद लड़की ने अपने साथी की तरफ देखा, वो भी उस इमारत को ही देख रहा था। अपने साथी को देखने के बाद लड़की ने अपने कदमों में रखा हुआ बैग उठाया और उसे खोलकर इसमें एक अजीब से साख का रिवॉल्वर निकालकर उसका जायजा लिया। रिवॉल्वर का जायजा लेने के बाद G5 ने बैग में से ट्रांजिस्टर जैसी एक मशीन भी निकाल दी जिस पर 4 मुख्तलिफ रंगों के बटन लगे हुए थे और बटनों के ऊपर एक छोटी सी स्क्रीन भी थी। नीचे उतरो 4B, कहीं हम ताखिर का शिकार ना हो जाएं, G5 ने अपने साथी से कहा। इसके साथी ने बगैर कोई बात कहे कार का दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। G5 भी अपने साइड का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आई। कार से नीचे उतरने के बाद वो दोनों सुर्ख रंग की इमारत की तरफ बढ़े। इस इमारत का गेट भी सुर्ख रंग का ही था। गेट के करीब पहुंचकर G5 ने अजीब से साख के रिवॉल्वर का रुख इमारत की तरफ कर दिया। रिवॉल्वर पर ट्रिगर की जगह एक छोटा सा बटन लगा था। G5 ने वो बटन दबाया तो रिवॉल्वर में से नीले रंग की एक शुआ निकली और निकलकर इमारत की तरफ चली गई। शुआ फायर के बाद G5 ने B4 की तरफ देखा तो उसने भी जेब से एक रिवॉल्वर निकाल लिया। ये भी लेजर रिवॉल्वर ही था और इस पर ट्रिगर की जगह एक बटन लगा हुआ था। B4 ने गेट के लॉक के की होल पर लेजर रिवॉल्वर की नाल रखकर बटन दबा दिया। अगले ही लम्हे लॉक पिघल कर पानी की तरह बह गया। B4 ने गेट पर दबाव डाला तो गेट खुल गया। B4 और G5 इमारत में दाखिल हो गए। गेट के करीब ही एक छोटा सा कैबिन बना हुआ था। इस कैबिन में 2 अफराद मौजूद थे जो इस वक्त टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े हुए थे। उनकी हालत से लग रहा था कि वो बेहोश हैं। बी4 ने लेजर रिवॉल्वर का रुख उनकी तरफ करके बटन दबा दिया। सुर्ख रंग की शुआनी कलकर इन दोनों पर पड़ी और इन दोनों के जिस्म पिघल गए। बी4 और जी5 केबिन से बाहर निकलकर असल इमारत की तरफ बढ़े। कमरों के करीब पहुंचकर वो एक लम्हे के लिए रुक गए और फिर एक कमरे के दरवाजे तक पहुंचे। बी4 ने दरवाजे पर दबाव डाला तो वो खुल गया। वो दोनों ही कमरे में दाखिल हो गए। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, उनकी आंखों में चमक पैदा हो गई। इस कमरे के एक कोने में दो बड़ी मशीनें और दूसरे कोने में मेज पर दो कंप्यूटर रखे हुए थे। मशीनें और कंप्यूटर उस वक्त ऑन थे। उनके अलावा फर्श पर चार अफराद पड़े हुए थे और उनकी हालत भी बता रही थी कि वो बेहोश होने के बाद कुर्सियों से नीचे गिरे हैं। बी4 तो लेजर रिवॉल्वर का रुख उनकी तरफ करके बटन दबाने लगा, जबकि जी5 कंप्यूटर की तरफ बढ़ी। वो कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाने लगी। तकरीबन 1.5 मिनट के बाद उसने बी4 की तरफ देखा, जो उसकी तरफ देख रहा था। मंजिल वन पर हमारी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है, जी5 ने मुतमईन लहजे में कहा। बी4 ने उसकी बात का जवाब जबान से देने के बजाय इस बात में सर हिलाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जी5 भी उसके पीछे ही कमरे से बाहर निकल आई। फिर अगले चंद सेकंडों बाद वो अपनी कार तक पहुंच गए। बी4 ने कार स्टार्ट की तो इसी लम्हे कार में खूबसूरत मौसीकी सुनाई देने लगी। बी4 ने कार आगे बढ़ाई, जबकि जी5 ने सामने लगे हुए बहुत से बटनों में से एक बटन दबा दिया। चीफ फ्रॉम हेडक्वार्टर बटन के दबते ही कार में एक तेज हवा सुनाई दी। जी5 अटेंडिंग यू, लड़की ने कहा। अपना कोड बताओ, दूसरी तरफ से इंतहाई सख्त लहजे में कहा गया। जी5 जी5 जी5, लड़की ने जी5 की गर्दान ही शुरू कर दी। यस, रिपोर्ट दो। अब भी दूसरी तरफ से बिग चीफ की कड़क आवाज सुनाई थी। बिग बॉस, मंजिल वन पर हमारी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है, जी5 ने कहा। तफसील बताओ, दूसरी तरफ से बिग चीफ ने तहकुमाना लहजे में कहा। बॉस, हमने एस लेजर रिवॉल्वर से शुआ फायर की, जिससे सुर्ख इमारत में मौजूद तमाम अफराद बेहिस हो गए। इसके बाद हम इमारत में दाखिल हुए। हमने बेहिस अफराद के खात्मा लेजर रिवॉल्वर से किया। मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में मामूली सी तब्दीली की। अब सुबह तक मैं मेन बिल्डिंग से यहाँ तक जो भी रिपोर्ट आएगी वो यहीं तक रहेगी। यहाँ खतरे का अलार्म नहीं बजेगा और ना ही कोई फर्द मेन बिल्डिंग में किसी गड़बड़ की रिपोर्ट अपने अफसर को दे सकेगा। यूँ हम मेन बिल्डिंग में इत्मीनान से अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर सकेंगे, जी5 ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ओके, अब तुम जल्द अज जल्द मेन बिल्डिंग में पहुंचकर अपना मिशन मुकम्मल करो, दूसरी तरफ से तहकुमाना लहजे में कहा गया। और उसके साथ ही दोबारा मौसीकी की आवाज सुनाई देने लगी। जी5 ने सामने लगा हुआ बटन प्रेस किया तो मौसीकी की आवाज बंद हो गई। बी4, कार की रफ्तार बढ़ा दो, जी5 ने कहा। तो कार की रफ्तार एकदम तेज हो गई। तकरीबन 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद कार पहाड़ी रास्ते पर आ गई। यहाँ बी4 ने रफ्तार आहिस्ता कर ली और फिर एक मोड़ मुड़ते ही बी4 ने कार रोक ली। कुछ फासले पर एक वैन खड़ी हुई थी। वैन अंधेरे का ही हिस्सा मालूम हो रही थी, लेकिन जी5 और बी4 ने मखसूस चश्मे लगाए हुए थे, इसलिए उन्हें दूर तक हर चीज साफ दिखाई दे रही थी। कार के रुकते ही वैन का दरवाजा खुला और उसमें से एक तवील उलकामत लेकिन पतले जिस्म का आदमी उतर कर कार के करीब आ गया। बी9, तुम सब मिशन के लिए तैयार हो ना? जैसे ही वो आदमी कार के करीब आया, जी5 ने उससे पूछा। यस मादाम, बी9 ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ओके मूव, जी5 ने कहा। तो बी4 ने कार आगे बढ़ा दी। बी9 दौड़ कर वैन में जा बैठा और अगले ही लम्हे वैन भी हरकत में आ गई। दोनों गाड़ियां ऊपर की तरफ बढ़ रही थीं। रास्ता दुश्वार गुजार था। सड़क के दोनों जानिब गहरी खाइयां थीं। इस रास्ते पर दिन में सफर करना भी बहुत मुश्किल था और रात को तो कोई भी हिम्मत नहीं करता था, लेकिन इन दोनों गाड़ियों के ड्राइवर निहायत ही इत्मीनान से ड्राइविंग कर रहे थे। हालांकि उन्होंने गाड़ियों की लाइट्स भी बुझाई हुई थीं, लेकिन अपने मखसूस चश्मों की वजह से उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो रात के बजाय दिन में ड्राइविंग कर रहे हों। तकरीबन 10 मिनट तक सफर करने के बाद दोनों गाड़ियां रुक गईं। जी5 और बी4 कार से नीचे उतरे। वैन से 8 आदमी नीचे उतरे। इनमें से 2 आदमियों ने बैग उठाए हुए थे। जी5 और बी4 पैदल आगे बढ़ने लगे और टेढ़े मेढ़े रास्तों पर ऊंचाई की तरफ सफर कर रहे थे। पैदल सफर में भी उन्हें 10 मिनट लग गए। 10 मिनट बाद वो एक बड़े पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके थे। चोटी पर पहुंचकर उन्होंने बैग खोले। एक बैग में एक बड़ा स्टैंड और एक इंतहाई जदीद दूरबीन थी। उन्होंने दूरबीन स्टैंड स्टैंड में फिट करके स्टैंड को भी एडजस्ट किया। इसके बाद दूसरा बैग खोला। दूसरे बैग से एक बड़ी लेकिन जदीद गन बरामद हुई, जिसके दस्ते पर तीन रंगों के बटन लगे हुए थे। बी फोर ने इस गन को दूरबीन के साथ ही फिट किया और इसके बाद पीछे हट गया। इसके पीछे हटते ही जी फाइव आगे बढ़ी और उसने दूरबीन से आंखें लगा ली। उसकी नजरों के सामने एक बड़ी सी इमारत आ गई। इस इमारत के चारों तरफ पहाड़ियां थीं। जी फाइव दूरबीन घुमाकर इस इमारत का जायजा लेने लगी। चारों तरफ से पहाड़ियों में घिरी होने की वजह से इस इमारत में जाने का कोई रास्ता ही नहीं था, जबकि इस इमारत के सहन में लातादाद फौजी दिखाई दे रहे थे। बी फोर, ये है हमारा टारगेट। पहले हमने इसका पावर हाउस नाकारा करना है, जो कि इस इमारत में मौजूद है। ब्लू रेज इनके पावर हाउस को लम्हों में पिघला देगी, और जैसे ही पावर हाउस पिघला, उनका नाकाबले शिकस्त सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ हो जाएगा, और फिर हम इसमें एल गैस फायर कर देंगे, जिससे इस इमारत में मौजूद तमाम अफराद बेहोश हो जाएंगे और हम अपना मिशन मुकम्मल कर लेंगे। जी फाइव ने खुशी से मामूर लहजे में कहा। यस मादाम, प्लानिंग तो यही है, और हमारी प्लानिंग तो नाकाम हुआ ही नहीं करती, बी फोर ने मुतकब्बिराना लहजे में कहा। ओके, मैं अब ब्लू रेज फायर करने लगी हूँ, जी फाइव ने कहा, और फिर उसने गन के दस्ते पर लगे तीन बटनों में से नीले रंग का बटन दबा दिया। एक बार फिर दूरबीन से उस इमारत को देखा और उसके बाद ट्रिगर की जगह लगे हुए बटन को प्रेस कर दिया। जैसे ही बटन प्रेस हुआ, गन की नाली से नीले रंग की एक शुआ निकली। शुआ आसमानी बिजली की रफ्तार से उस इमारत की तरफ बढ़ी और फिर इस इमारत के एक कमरे की दीवार में दाखिल हो गई। अगले ही लम्हे वो पूरी इमारत अंधेरे में डूब गई। जी फाइव ने फौरन ही गन पर लगे बटनों में से सुर्ख रंग का बटन दबा दिया और उसके बाद ट्रिगर की जगह पर लगे बटन को भी दबा दिया। इस पर दबा नाल में से सुर्ख शुआ निकल कर इमारत की तरफ बढ़ी। जी फाइव फौरन ही स्टैंड से पीछे हट गई और उसने अपने साथियों की तरफ देखा। इस दौरान इसके साथियों ने 6 बलून तैयार कर लिए थे। एक बलून जी फाइव ने, दूसरा बी फोर ने और बाकी चार उनके साथियों ने पकड़ लिए। बलून में एक जगह 4 बटन लगे हुए थे। जी फाइव ने एक बटन प्रेस किया तो बलून ऊपर को उठने लगा। चंद लम्हों में जी फाइव फजा में थी। उसके साथियों ने भी उसकी पैरवी की और फिर सब परवाज करते हुए इस इमारत की तरफ बढ़ने लगे। इन बलून की रफ्तार आम बलून के मुकाबले में ज्यादा थी। वो चंद मिनटों में ही अपनी मतलूबा इमारत के ऊपर पहुंच गए। मखसूस चश्मों की वजह से अंधेरे के बावजूद उन्हें इमारत में लातादात फौजी नजर आ रहे थे, जो जमीन पर गिरे हुए थे। उनकी हालत से साफ लग रहा था कि वो या तो मर चुके हैं या बेहोश हैं। इनकी फजा से ही बगौर देखने के बाद वो नीचे आ गए। ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम का दारोमदार बिजली पर था। पावर हाउस तबाह करके उन्होंने इस इमारत की सिक्योरिटी सिस्टम को जीरो कर दिया था, और अब वो मुतमईन थे कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जमीन पर उतरने के बाद उन्होंने बलून के बटन प्रेस किए तो वो फजा में मुअल्लिक हो गए। इन सब ने अपनी जेबों में से लेजर पिस्टल निकाले और जमीन पर गिरे हुए फौजियों पर शुआ फायर करते हुए आगे बढ़ गए। शुआ जिस भी फौजी को छू रही थी, उसे पानी की मानिंद बना रही थी। शुआएं फायर करते हुए वो कमरों के करीब पहुंच गए। जी फाइव ने कमरे के दरवाजे पर दबाव डाला तो दरवाजा खुल गया। वो चारों ही कमरे में दाखिल हो गए। इस कमरे में 9 अफराद बेहोश पड़े हुए थे, जिनमें से 2 लड़कियां थीं और बाकी मर्द थे। इन 5 अफराद को उठा लो, जी फाइव ने एक लड़की और 4 मर्दों की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर उसने अपना लेजर पिस्टल जेब में रखा और एक लड़की को उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया। बी फोर ने एक मर्द को उठा लिया, जबकि बाकी अफराद ने बाकी आदमियों को उठाकर अपने कंधों पर डाला और फिर वो कमरे से बाहर आ गए। टेलीफोन की बेल बजी तो इमरान की आंख खुल गई। उसने लिहाफ से मुंह निकालकर वॉल क्लॉक की तरफ देखा। कमरे में नाइट बल्ब रोशन था, इसलिए धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। वॉल क्लॉक पर 3:40 हो चुके थे। इमरान मुताले से फारिग होकर 1 बजे ही सोया था। इमरान ने टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाया, जो कि बेड के करीब साइड टेबल पर रखा हुआ था। किसने बजाई है फोन की घंटिया? मारा धड़कन लागा जी, इमरान ने गुनगुनाते हुए कहा। व्हाट? दूसरी तरफ से हैरत भरी आवाज सुनाई दी। लहजा गैर मुल्की था। अगर निस्फ रात को टेलीफोन की बेल बजे तो कोई अच्छी खबर नहीं मिलती, इसलिए दिल घबरा जाता है, और वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कि मैं घबरा गया हूँ, इमरान ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा। सॉरी सर, लेकिन यहाँ निस रात नहीं है, और अगर निस रात होती भी तो वाकई ऐसा हो गया है कि इत्तला देना बहुत जरूरी है, दूसरी तरफ से परेशान लहजे में कहा। अच्छा, क्या इसराइल में भैंस ने अंडे देने शुरू कर दिए हैं? इमरान ने हैरत का इजहार करते हुए कहा। दूसरी तरफ से बोलने वाले के लहजे से इमरान को मालूम हो गया था कि उसे इसराइल से कॉल की जा रही है, और उसने ये भी अंदाजा लगा लिया था कि इसराइली सदर के सिल्वर प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ हो गई है। नो सर, ऐसी तो कोई बात नहीं, दूसरी तरफ से हकलाते हुए लहजे में कहा गया। फिर 6 टांगों वाला बकरा या 2 दुमे वाली गाय पैदा हो गई है, या फिर सांप के धड़ और औरत के चेहरे वाली मखलूक ने जन्म लिया है, इमरान ने कहा। नो सर, इन बातों में से कोई भी बात नहीं हुई, दूसरी तरफ से कहा गया। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसराइल में ऐसी क्या बात हुई है कि तुम्हारी उंगलियों में इस कदर शदीद ख़ारिश हुई कि तुमने निस रात को मेरे नंबर प्रेस करके वो ख़ारिश दूर की, इमरान ने कहा। सर, मुझे तो सदर मुमलिकत ने ये हुक्म दिया था कि मैं अभी आपको ये खबर दे दूं कि सिल्वर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले तमाम साइंसदानों को अगवा कर लिया गया है, दूसरी तरफ से परेशान लहजे में कहा गया। लो जी, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, और वो भी मरा हुआ। तुम्हारे घबराए हुए लहजे से लग रहा था जैसे अकरी मियाँ ने इसराइल से तर्क ताल्लुक का ऐलान कर दिया है और अब इसराइल यतीम हो गया है, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। सर, आप परेशान नहीं हुए? पाकिस्तान का भी एक साइंसदान सिल्वर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। जब से ये साइंसदान नामी मखलूक पैदा हुई है, तब से ये अगवा भी होने लगी है। कुर्राइस पर ये कोई नया वाकया नहीं है, इमरान ने बदस्तूर मुंह बनाते हुए कहा। सर, हमारे सदरे मुमलिकत तो इस वाकये से बहुत परेशान है। बहरहाल, मेरा काम आपको इत्तला देना था जो मैंने दे दी है। ओके, गुड बाय, दूसरी तरफ से कहा गया, और उसके साथ ही रब्ता मुनक़ता हो गया। इमरान ने भी रिसीवर क्रेडल पर रखा और एक बार फिर वॉल क्लॉक की तरफ देखा। अब 4 बजने वाले थे, सुबह की अजान होने में अभी काफी वक्त था, इसलिए उसने सोचा कि अभी सो जाए और सुबह उठकर नमाज पढ़ने के बाद इस मामले को देखेगा। ये सोचकर उसने लिहाफ दोबारा अपने मुंह पर डाल लिया। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि टेलीफोन की घंटी एक बार फिर बजने लगी। अब क्या हुआ? क्या साइंसदानों के साथ साथ तुम्हारे सदरे मुमलिकत भी अगवा हो गए हैं? इमरान ने लिहाफ से हाथ बाहर निकालकर रिसीवर उठाया और कान से लगाते हुए बोला। इमरान, मैं फरीदी बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से कर्नल फरीदी की आवाज सुनाई दी। या मुर्शिद, आपको साइंसदानों के अगवा की इत्तला दी गई है, इमरान ने कहा। तुम्हारे लहजे से लग रहा है कि तुम इस मामले को संजीदा नहीं ले रहे। क्या तुम्हारे नजदीक डॉक्टर मुशाहिद हक्कानी की कोई अहमियत नहीं है? कर्नल फरीदी ने खुश्क लहजे में कहा। ऐसी बात नहीं है कर्नल साहब, मेरे कौम का हर फर्द हमारे लिए अहम है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि साइंसदान अगवा नहीं हुए हैं, इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि इसराइल की तरफ से हमें गलत इत्तला भेजी गई है? हमारे साइंसदानों ने मुकम्मल काम कर लिया था, इसराइल ने उन्हें खुद गायब कर दिया है ताकि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट के खुद मालिक बन जाएं, कर्नल फरीदी की आवाज सुनाई दी। या मुर्शिद, आपसे एक बात किनारे पर खड़े होकर भी की जाए तो आप फौरन तह तक पहुंच जाते हैं, इस मर्तबा इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसराइल कभी भी इंसानियत के लिए मुखलिस नहीं हो सकता। इसराइली सदर की वो सारी बातें ढोंग ही हो सकती हैं, लेकिन हमारे साइंसदान तो गायब हैं और हमने उन्हें तलाश करना है, दूसरी तरफ से कर्नल फरीदी की संजीदा आवाज सुनाई दी। इसराइली सदर ने साइंसदानों को कहीं छुपा दिया होगा, हमें उन्हें तलाश कर लेना चाहिए, आप फिक्र ना करें, इमरान ने मुतमईन लहजे में कहा। अगर हमारे साइंसदान अब इस दुनिया में ना हुए तो, कर्नल फरीदी ने खदशे का इजहार किया। इसराइली सदर मुझे अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो ऐसी जुर्रत नहीं करेगा। अगर हमारे साइंसदान को मामूली सा नुकसान भी पहुंचा तो मैं इसराइल की ईंट से ईंट बजा दूंगा, इस मरतबा इमरान ने भेड़िए की मानिंद गुस्से से गुर्राते हुए कहा। तुम्हारा ख्याल ये है कि हमारे जो साइंसदान गायब हो चुके हैं वो कुछ दिनों बाद मुख्तलिफ तरीकों से दस्तियाब हो जाएंगे, लेकिन सिल्वर प्रोजेक्ट इसराइल हजम कर लेगा, कुछ मुद्दत बाद वो मशीनी डॉक्टर की प्रोडक्ट शुरू कर देगा, कर्नल फरीदी ने कहा। अल्लाह आपका भला करे, आप तो मेरी सोच इस तरह पढ़ लेते हैं जिस तरह तालिब इल्म तख्ता सियाह पर लिखी हुई इबारत पढ़ लेते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम क्या करोगे? क्या इसराइल को ये प्रोजेक्ट हजम करने दोगे? कर्नल फरीदी ने पूछा। बेशक ये मंसूबा इसराइल का है, लेकिन इसमें हमारी मेहनत शामिल है और इसराइल ने खुद हमें इस मंसूबे में शामिल किया है, इसलिए अब इस मंसूबे पर हमारा भी उतना ही हक है जितना कि इसराइल का, और हम अपना हक हासिल करना जानते हैं कर्नल साहब, इमरान ने मजबूत लहजे में कहा। जितना हक पाकिस्तान का है उतना ही काफ्रिस्तान का भी है, और हम भी अपने हक से दस्तबरदार नहीं हुआ करते। ओके, अल्लाह हाफिज, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर कॉल काट दी गई। इमरान ने मुंह और हाथ लिहाफ से बाहर निकाले और रिसीवर क्रेडिट पर रखा और एक बार फिर वॉल क्लॉक की तरफ देखा। अब सुबह की अजान होने में थोड़ा ही वक्त रह गया था। उसने सोचा कि वो नमाज पढ़कर दानिश मंजिल जाए। जब वो दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो हसबे मामूल ब्लैक जीरो के एहतराम में खड़ा हो गया। रस्मी सलाम दुआ के बाद इमरान ने अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया, जबकि ब्लैक जीरो किचन की तरफ बढ़ गया। इमरान साहब, खैरियत है? आज आप सुबह ही सुबह आ गए, आजकल तो कोई केस भी नहीं है, ब्लैक जीरो ने चाय की प्याली इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा और फिर वो भी अपनी कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हें मालूम है कि इसराइली सदर के सिल्वर प्रोजेक्ट पर मुख्तलिफ ममालिक के साइंसदान काम कर रहे हैं, जिनमें एक साइंसदान हमारा भी है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। जी हाँ, और मैं पहले दिन से ही ये दावा कर रहा हूँ कि इंसानियत की भलाई के लिए इसराइल कभी इतना मुखलिस नहीं हो सकता, इसमें लाजमन उसकी कोई चाल होगी, ब्लैक जीरो ने कहा। शायद तुम्हारा दावा सच्चा हो, हम किसी के दिल का हाल तो नहीं जानते, इसलिए हमें तो जबान पर ही एतमाद करना चाहिए, इमरान ने कहा। आप इसराइल में मौजूद साइंसदानों का जिक्र कर रहे थे, ब्लैक जीरो ने कहा। वो चूंकि इस मौजू पर इमरान से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने मकसद की बात की थी। इसराइल के साइंसदानों समेत पाकिस्तान, काफ्रिस्तान, बल्गारनिया और उर्दून के साइंसदान लेबोरेटरी से अगवा हो चुके हैं, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो चौंक पड़ा। ओह इमरान साहब, ये कैसे मुमकिन है? इस लेबोरेटरी का सिक्योरिटी प्लान तो आपने कर्नल फरीदी के साथ मिलकर बनाया था, जिस पर इसराइली माहिरीन के साथ साथ कर्नल जैद और मेजर परमूद के मशवरे भी शामिल थे, और आप लोगों ने इस सिक्योरिटी प्लान को सिल्वर प्लान का नाम दिया था और इसे नाकाबिले शिकस्त बताया था, ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। हमारी कही हुई बात हर पे आखिर तो नहीं है, हम इंसान हैं और हमारे बनाए हुए मंसूबों में खामी रह सकती है जो वक्ती तौर पर हमें नजर भी नहीं आई, इमरान ने कहा। इमरान साहब, इस प्लान की आपने मुझे जो तफसीलात बताई थी उसके मुताबिक लेबोरेटरी तक किसी का पहुंचना मुमकिन नहीं था। मेरा ख्याल है कि ये काम खुद इसराइलियों ने किया है, साइंसदानों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा और इसराइल इस प्रोजेक्ट में किसी की शराकत नहीं चाहता होगा, लिहाजा उसने खुद ही साइंसदानों को गायब कर दिया है ताकि हमें ये बावर करा सके ये काम किसी और ने किया है, ब्लैक जीरो ने यकीन भरे लहजे में कहा। मुमकिन है कि तुम्हारे खदशात दुरुस्त हों, बहरहाल हमें मालूमात तो हासिल करनी होंगी, इमरान ने कहा और फिर उसने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने लगा। ब्लैक जीरो को अंदाजा हो गया कि इमरान इसराइल में मौजूद फॉरेन एजेंट को कॉल कर रहा है। रॉकी स्पीकिंग, राब्ता मिलने पर दूसरी तरफ से एक भारी आवाज सुनाई दी। X2, इमरान ने X2 के लहजे में कहा। यस सर, हुकुम सर, दूसरी तरफ से रॉकी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। रॉकी, मुख्तलिफ ममालिक के साइंसदान इसराइली सदर के हुक्म पर एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट को इसराइली सदर ने सिल्वर प्रोजेक्ट का नाम दिया था। अब इत्तला मिली है कि जो साइंसदान इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उन्हें अगवा कर लिया गया है। तुम ये मालूम करो कि उन्हें किसने और कैसे अगवा किया है, इमरान ने तहकुमाना लहजे में कहा। ओके सर, मैं 3 घंटे बाद रिपोर्ट करता हूँ, दूसरी तरफ से रॉकी ने कहा। तो इमरान ने रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया। जैसे ही रिसीवर रखा फोन की घंटी बजने लगी। X2, इमरान ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा। ताहिर साहब, अगर साहब मौजूद हो तो उनसे मेरी बात करा दें, दूसरी तरफ से सुलेमान की आवाज सुनाई दी। हाँ सुलेमान, क्या बात है, इस मरतबा इमरान ने अपने असल लहजे में कहा। साहब, कर्नल जैद का फोन आया था, उन्होंने कहा है कि आप उन्हें फोन कर लें, सुलेमान ने कहा। ओके, मैं कर्नल साहब को फोन कर लेता हूँ, इमरान ने कहा और फिर उसने रिसीवर रख दिया। इमरान साहब, कर्नल जैद भी इस सिलसिले में बात करना चाहते होंगे, उनकी तो मंगेतर वहाँ काम कर रही थी, ब्लैक जीरो ने कहा। कर्नल फरीदी साहब का फोन आ चुका है, अब कर्नल जैद का फोन आया है, कुछ देर बाद कर्नल डी का भी फोन आ जाएगा, ये सब सीक्रेट एजेंट तो हैं, लेकिन फौजी ऑफिसर भी हैं, एक मैं ही बेचारा सिविलियन हूँ, इमरान ने कहा और कर्नल जैद का नंबर प्रेस करते करने लगा। ब्लैक जीरो ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया, अलबत्ता उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। इस दौरान कर्नल जैद से राब्ता भी हो गया। उसने वाकई इस मौजू पर बात की और उसका भी यही ख्याल था कि ये काम इसराइल ने खुद ही किया है और अब ड्रामा कर रहा है। कर्नल जैद ने यह भी बताया कि वो आज ही इसराइल रवाना हो रहा है ताकि डॉक्टर आबेला को ट्रेस कर सके। इमरान साहब, आप सुबह जल्दी आ गए हैं इसलिए आपने नाश्ता नहीं किया होगा, मैं नाश्ता बनाकर लाता हूँ। जैसे ही इमरान ने रिसीवर क्रेडल पर रखा, ब्लैक जीरो ने उठते हुए कहा, और चूंकि इमरान ने अभी नाश्ता करना था इसलिए उसने इस बात में सर हिला दिया। वो नाश्ते से फारिग हुए ही थे कि कर्नल डी का भी फोन आ गया और उसने भी यही बताया कि वो मेजर परमूद को डॉक्टर मुराद की तलाश के सिलसिले में इसराइल को भेज रहा है। इमरान साहब, ये सब लोग इसराइल जा रहे हैं तो हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए। जैसे ही इमरान कर्नल डी से बात करके फारिग हुआ, ब्लैक जीरो ने उससे कहा, तुम इसराइल में सीक्रेट एजेंटों का मेला लगवाना चाहते हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ब्लैक जीरो ने कहकहा लगाया। अभी उसका कहकहा थमा नहीं था कि टेलीफोन की घंटी फिर बजने लगी। इमरान ने रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया तो ब्लैक जीरो के कहकहे को ब्रेक लग गए। X2, इमरान ने रिसीवर कान से लगाते हुए X2 के लहजे में कहा, चीफ, रॉकी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से रॉकी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। यस रॉकी, रिपोर्ट दो, इमरान ने X2 की आवाज में कहा। चीफ, इसराइल की तमाम सीक्रेट एजेंसियां साइंसदानों को ट्रेस कर रही हैं, लेकिन उनका कहीं भी कोई क्लू नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ से रॉकी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई थी। तुम हालात पर नजर रखो और जैसे ही कोई इत्तला मिले फौरन रिपोर्ट देना, इमरान ने ये कहकर रिसीवर रख दिया। खुद ही तो साइंसदानों को गायब कराया है, फिर भला कैसे क्लू मिलेगा? दुनिया को दिखाने के लिए ड्रामा शुरू कर दिया गया है, ब्लैक जीरो ने तंजिया लहजे में कहा। तुम्हारी बात सच होती दिखाई दे रही है, इसराइल में सीक्रेट एजेंटों का मेला लग ही रहा है, इमरान ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, इसराइल से किसी भलाई की तवक्का करना हिमाकत से कम नहीं, ब्लैक जीरो ने कहा। ओके, तुम जूलिया को फोन कर दो, वो तमाम मेंबरान को अपने फ्लैट पर तलब कर ले, मैं भी उसी की तरफ जा रहा हूँ, इमरान ने कहा और फिर वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, जबकि ब्लैक जीरो जूलिया को कॉल करने लगा। इसराइली सदर इस वक्त अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। उनके सामने कर्नल डेविड, कर्नल शमून, लॉर्ड मीकाले और डायरेक्टर इंटेलिजेंस गर्दनें झुकाए बैठे थे। सदर साहब का चेहरा गुस्से से और ज्यादा सुर्ख हो रहा था और वो अपने सामने बैठे अफराद को शोलाबार नजरों से देख रहे थे। ये है तुम्हारी कारकर्दगी, ये तुम्हारा शहर है, तुम्हारा मुल्क है, यहाँ तुम्हें हर तरह की सहूलत हासिल है, लातादाद वसाइल मुहैया हैं, उसके बावजूद साइंसदान अगवा हो गए और तुम्हें इतना भी मालूम नहीं कि इन्हें किन लोगों ने अगवा किया है, सदरे मुमलिकत ने उसी लहजे में कहा। सर, जिस तरह साइंसदान अगवा हुए हैं और अब उनका कोई क्लू भी नहीं मिल रहा, मुझे यकीन है कि इस कार्रवाई के पीछे अली इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का हाथ है, कर्नल डेविड ने धीमे लहजे में कहा। वाट, सदर ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। यस सर, इसी तरह तो सिर्फ वही लोग कार्रवाई करते हैं और इस जगह तो उनके लिए कार्रवाई करना भी बहुत आसान था, क्योंकि इमरान ने ये जगह देखी हुई थी और सिक्योरिटी प्लान भी उसी का बनाया हुआ था। अपने बनाए हुए प्लान का तो तोड़ भी वो आसानी से कर सकता है, कर्नल डेविड ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। लेकिन वो लोग ऐसा क्यों करेंगे, इसराइली सदर ने हैरान होते हुए कहा। सर, वो इतने अजीम उशान मंजूबे पर तन्हा काबिज होना चाहते हैं, कर्नल डेविड ने कहा। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है, इसराइली सदर ने कहा। सर, मैंने इसी नुक्ते पर इन्वेस्टिगेशन करनी है और मैं बहुत जल्द आपको सबूत भी पेश कर दूंगा, कर्नल डेविड ने यकीन भरे लहजे में कहा। अगर तुम वो सबूत मुहैया कर दो तो मैं वो सबूत अक्वामे मुत्तहिदा में पेश कर दूंगा और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तन्हा कर दूंगा, इसराइली सदर ने कहा। यस सर, आपके हुक्म की तामील होगी सर, कर्नल डेविड ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। सर, मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, GP7 के चीफ कर्नल शमून ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। कहें, आप क्या कहना चाहते हैं, सदर मुमलिकत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। सर, अगर ये कार्रवाई पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की है, फिर तो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इसराइल का रुख नहीं करेगी और अगर ये कार्रवाई किसी और की है तो फिर पाकिश या सीक्रेट सर्विस इसराइल लाज मनाएगी, कर्नल शमून ने कहा। सर, कर्नल साहब की बात में काफी वजन है, सदर मुमलिकत के खसूसी मुशीर लॉर्ड मेकाले ने कहा। सर, कर्नल शमून साहब और लॉर्ड साहब अली इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में इतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ। वो लोग ये साबित करने के लिए कि ये कार्रवाई उनकी नहीं है, इसराइल का लाजमन रुख करेंगे, कर्नल डेविड ने तंजिया लहजे में कहा। लॉर्ड मिकाले ने कर्नल शमून की हिमायत की थी जो कर्नल डेविड को अच्छी नहीं लगी। पार्ट 1 यहाँ अख्ताम पजीर होता है।